हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। झलक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में आत्मसम्मान की चमक साफ दिख रही थी। तभी बबीता जी ने आगे आदेश दिया, इन दोनों लड़कियों को अलग से दूसरा कमरा दिया जाए। वैसे भी इनका पुराना कमरा पूरी तरह खराब हो चुका है। झलक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में आत्मसम्मान की चमक साफ दिख रही थी। तभी बबीता जी ने आगे आदेश दिया, इन दोनों लड़कियों को अलग से दूसरा कमरा दिया जाए। वैसे भी इनका पुराना कमरा पूरी तरह खराब हो चुका है। और जल्दी ही झलक को भी किसी एक नए रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन सभी लोगों ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया था कि अब अवंतिका अकेडमी में नहीं रहेगी, क्योंकि उसने रूल्स और रेगुलेशंस तोड़े थे। लेकिन जब सबने उसे इस तरह रोते हुए देखा, तो झलक ने एक एक करके सबकी ओर देखा और फिर उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि उस लड़की ने अपने किए की माफ़ी मांग ली है, मुझे लगता है कि उसे माफ़ कर देना चाहिए। ये कहकर झलक वहां से चली गई। अवंतिका हैरानी से झलक को देख रहा था और भारी मन से बोला था कि शायद वो लड़की उतनी बुरी भी नहीं है जितना वो उसे समझ रहा था। उसे अंदर ही अंदर झलक के साथ किए गए अपने व्यवहार पर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। फिलहाल उसे काफ़ी बुरा लग रहा था कि उसने बिना पूरी बात जाने झलक के साथ ऐसा व्यवहार किया। लगातार माफ़ी मांगने के बाद भी बबीता जी उसे सख्त लहजे में बोल रही थीं कि तुम्हें महागुरु ही तुम्हारे खिलाफ़ फ़ैसला लेंगे। लेकिन महागुरु ने जब झलक की बातें सुन ली थीं, तो उन्होंने उसे देखते हुए कहा था, ठीक है, हम तुम्हें एक और मौका देंगे, लेकिन अब तुम्हें उस कमरे का सारा सामान बाहर निकालना होगा जिस कमरे को तुमने खराब और डिस्टर्ब किया है, और उस कमरे को पूरी तरह से साफ भी करना होगा। आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये कहकर दादाजी ने उसे वहां रहने की इजाज़त दे दी थी। हालांकि बबीता जी और साथी दिवाकर जी ने ये आपत्ति भी उठाई थी कि इस तरह अकेडमी में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लेकिन दादाजी झलक की आंखों में देख चुके थे कि झलक नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी का करियर या जिंदगी बर्बाद हो। इसी वजह से उन्होंने उसे वहां रहने दिया। फिलहाल दादाजी ने तुरंत अपना हाथ उठाया और बोले, अब डिसीजन हो चुका है, अब से ये दोनों लड़कियां, अनामिका और झलक, यही रहेंगी। हमें पूरी उम्मीद है कि ये दोनों जो हासिल करने यहां आई हैं वो जरूर हासिल करेंगी। दादाजी ने ये बात पूरे सम्मान और भरोसे के साथ कही थी। अनामिका का दिल तो कर रहा था कि वो जाकर तुरंत दादाजी को गले लगा ले, लेकिन झलक ने फौरन उसके कंधे पर हाथ रख दिया, मानो ये कहना चाह रही हो कि अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल रखो, अगर तुमने ऐसा किया तो दादाजी सबके सामने हाथ उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल अनामिका मिन मार कर रह गई। वहीं दादाजी ये सब देख चुके थे कि किस तरह झलक ने अनामिका को रोककर खड़ा किया था। वे मन ही मन बोले थे कि मुझे पूरी उम्मीद है, अगर ये दोनों बहनें एक साथ मिल गईं तो इन्हें कोई भी नहीं हरा पाए था। फिलहाल बबीता जी और दिवाकर जी ने भी महागुरु के कहने पर झलक और अनामिका को एक मौका दे दिया था। जल्दी ही गुरु दिग्विजय सिंह जी ने अपने खास अंदाज में सभी स्टूडेंट्स को कुछ ट्रिक्स, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के साथ ये सिखाना शुरू कर दिया था कि आगे किस तरह से बढ़ना है। बबीता जी झलक और अनामिका की ट्रेनिंग पर खास ध्यान दे रही थीं, जबकि दिवाकर जी और बाकी ग्रुप के बच्चों को ट्रेन कर रहे थे। साथ ही कुछ और ट्रेनर्स भी थे जो बाकी बच्चों की ट्रेनिंग संभाल रहे थे। आज झलक और अनामिका अपने अपने रूम में जाकर सामान रखकर फ्रेश हुईं, अकेडमी के कपड़े पहने और बाहर आ गईं। जैसे ही वे बाहर आईं, उन्होंने देखा कि कई सारी लड़कियां एक तरफ लाइन में खड़ी थीं और बबीता जी उनके सामने खड़ी थीं। बबीता जी ने सबको कुछ मूव्स करके दिखाने शुरू किए। ये मूव्स झलक को पहले से अच्छी तरह आते थे, क्योंकि गांव में उसने इस तरह की एक्टिविटीज़ कई बार की थीं, कभी घूमते हुए बंधे हुए घड़े को तोड़ना, कभी बोतल जैसे टारगेट पर फोकस करके वार करना। हालांकि आमतौर पर नए बच्चों को हल्की फुल्की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन दादाजी ने साफ इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि किसी के लिए भी ट्रेनिंग आसान नहीं होगी। जो भी बच्चे देर से ज्वाइन करेंगे, उन्हें यहीं से कंटिन्यू करना होगा। दादाजी जानबूझकर दोनों बेटियों को आसान ट्रेनिंग नहीं देना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनकी पोतियां जल्द से जल्द पूरी तरह मजबूत बने। फिलहाल झलक ने फटाफट वही स्टेप बड़ी आसानी से कर दिया, लेकिन बाकी लड़कियां उसके साथ स्ट्रगल करती रह गईं। ये देखकर बबीता जी हैरानी में डूब गईं। अनामिका भी वो स्टेप सही से नहीं कर पाई थी, तो वो बोली थी कि तुम्हें पहले से ही ये सब कैसे आता है, तुमने इसकी ट्रेनिंग पहले ही कहाँ ली है। लेकिन अनामिका और झलक ने अपने हाथ दोनों तरफ फैला दिए थे, मानो कुछ समझ ही ना आ रहा हो। वहीं दादाजी दूर से खड़े होकर झलक को इस तरह देखकर चौंक गए थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी और वे मन ही मन बोले थे कि लगता है हमारे खून का असर है, इस लड़की को बिना सीखे भी ट्रेनिंग आती है। उन्हें अंदर ही अंदर काफी प्राउड फील हो रहा था। हालांकि बबीता जी को झलक का इस तरह एक ही बार में टास्क पूरा कर देना कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन फिलहाल क्योंकि महागुरु जी सब देख चुके थे इसलिए उन्होंने उसी समय झलक को प्रोत्साहन दिया और फिर दोबारा पूरे जोश के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। धीरे धीरे अकेडमी में ट्रेनिंग पूरी तरह से जोरों पर चलने लगी थी। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ खुराना के दिल की हालत काफी अजीब हो चुकी थी। झलक के जाने के बाद उसे अपनी दुनिया एकदम सुनसान सी नजर आने लगी थी, लेकिन अब उसे आकांक्षा की कंपनी थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी थी। इतना ही नहीं, मौका देकर रणविजय ने जल्द ही मिस्टर और मिसेज ओबेरॉय को खुराना फैमिली मेंशन में डिनर के लिए इनवाइट कर दिया था और इस बारे में दादी को भी इन्फॉर्म कर दिया था। और जैसे ही नैना और ईशान वहां आए, उनके साथ साथ आकांक्षा भी वहां मौजूद थी, सिद्धार्थ भी वही था। झलक को गए हुए अब लगभग 10 से 15 दिन हो चुके थे, लेकिन सिद्धार्थ उसके बारे में और ज्यादा सोचने लगा था। दादी चाहती थी कि सिद्धार्थ जल्द से जल्द झलक की यादों से बाहर आ जाए, क्योंकि अगर वो इसी तरह झलक को याद करता रहा तो इसका असर उसके बिजनेस, घर, खानदान और सबसे ज्यादा उसकी सेहत पर पड़ सकता था। इसीलिए दादी चाहती थी कि अब जल्दी से जल्द सिद्धार्थ और आकांक्षा की सगाई और शादी एक साथ ही कर दी जाए। डिनर के बाद सभी लोग एक साथ बैठ गए थे। वहीं आकांक्षा चुपचाप नजरों से बार बार सिद्धार्थ को देखे जा रही थी। उधर सिद्धार्थ की नजरें भी अनजाने में बार बार आकांक्षा के चेहरे पर ही टिक जाती थी, क्योंकि उसके चेहरे में उसे झलक की झलक नजर आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने झलक ही बैठी हो जो किसी भी पल उल्टी सीधी बातें शुरू कर देगी, लेकिन आकांक्षा बेहद सभ्य तरीके से वहां बैठी हुई थी। सिद्धार्थ के दिमाग में ये ख्याल भी आया कि अगर यहां झलक होती तो अब तक न जाने कितना सामान तोड़ चुकी होती और खड़ी होकर बहस कर रही होती। इसी उधेड़बुन में सिद्धार्थ अंदर ही अंदर अपने दिल की उलझनों में फंसा हुआ था। तभी मौका देखकर रणविजय ने आंखों के इशारे से सिद्धार्थ को संकेत किया, मानो कह रहा हो कि अपने आशिक को लेकर बाहर जा। अब आकांक्षा ने हल्की सी मुस्कान की एक्टिंग करते हुए कहा, अभी मैंने काफी खा लिया है तो मैं थोड़ा टहलना चाहती हूँ, क्या मैं गार्डन में जा सकती हूँ? आकांक्षा ने बड़े ही सलीके से पूछा था। दादी तुरंत मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? और इतना कहते ही सिद्धार्थ आकांक्षा के साथ बाहर चला गया। दादी को सच में अच्छा लगा कि सिद्धार्थ ने कोई बहाना नहीं बनाया और सीधे आकांक्षा को लेकर बाहर चला गया। उन्हें मन ही मन काफी पॉजिटिव फीलिंग आई। फिलहाल डिनर खत्म करते हुए रणविजय वहां से उठ खड़ा हुआ था, क्योंकि वो चाहता था कि दादी अकेले में नैना से बात कर सकें।
हालांकि वो ज्यादा दूर नहीं गया था, बस थोड़ी दूरी पर जाकर खड़े होने का नाटक कर रहा था। तभी दादी नैना को देखकर बोली थी, नैना, सच कहूं तो हमें आपके बारे में जो कुछ सुनने को मिला वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम आपसे ओबेरॉय मैंशन में आकर मिलने वाले थे, लेकिन उस वक्त आप किसी न किसी पार्टी या इवेंट में बिजी रहती थीं।